फर्नीचर की इस सेल का फायदा उठाने के लिए सोडी फर्नीचर शोरूम 142 कैनेडी रोड साउथ इन ब्रैम्पटन। ह्यूज सेल, जो ले गया सो ले गया,
जो रह गया सो रह गया।
सोडी फर्नीचर, नया साल नया फर्नीचर। 9058747171। सोडी फर्नीचर स्टोर क्लियरेंस।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजर्स कॉस्मेटिक्स की बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी क्रिसमस वेयर हाउस सेल खास आपके लिए आ रही है। वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन पर्सेस, लगेज, डिजाइनर सनग्लासेस, नेल एंड हेयर कलर्स और भी बहुत कुछ। 80% तक की सेविंग्स रहेगी। बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम। ध्यान रहे, सेल इज फ्रॉम नवंबर 16 टू दिसंबर 8, फ्राइडे सैटरडे और संडे से मंडे। वेयरहाउस सेल यानी ज्यादा सेविंग्स फॉर लेस। विजिट lizascosmetics.com। इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है, और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह,
6478724900 लोकल नंबर 6478724900।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities, Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888, 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ओह, दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस का बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 4167447534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
एक जगह ऐसी है जहां ये सब कुछ हो रहा है, एक जगह जो शुमाली कानों को जुन्नू की अशिया साजी की कुव्वत के साथ मुंसलिक करके अपनी मईशत की तामीर नौ कर रही है। वो जगह जहां कनाडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के पहले प्लांट्स में करीब $44 बिलियन की नई सरमायाकारियां हुई हैं, जहां ज्यादा लोग काम करके ज्यादा तनख्वाह कमा रहे हैं। वो जगह है ओंटेरियो। ontario.ca/rebuilding और इकोनॉमी पर मजीद आएं। हुकूमत ओंटेरियो की जानिब से अदायगी करदा।
Amex Travels 5-star Hajj packages. आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing Hajj app के हाथों परेशान मत हों।
اہمیت آپ کی، بلاوا رب کا، انتظام و اہتمام ایم ایکس ٹریول کا، ایئر ٹکٹس مدینہ مکہ، منا ٹینٹس، عرفات کیمپ، حرم کے سامنے ہوٹل کی سہولت سے لے کر ڈاکومنٹیشن، ویزا، ہر چیز صرف ایم ایکس ٹریول کے ساتھ، لمیٹڈ سیٹس، کال ایم ایکس ٹریول۔
ایلیٹ حج 2025 پیکجز ایکسکلوسیو اسپیشل ڈیلز فار یو ایس، کینیڈین، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز، لمیٹڈ سیٹس۔
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں 770 ایم ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز، اور ہمیں ای آواز ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com، وہاں بھی آپ ہمارا ریڈیو سن سکتے ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن یعنی لائیو خبراں بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام یہ ایڈورٹائزز کے نمبر آپ کو ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر مل جائیں گے، اور ہمارا نمبر اس وقت نیوز سننے کے لیے 6478724900 پر ڈائل کر کے آپ کرسٹل کلیئر آواز ہماری سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، آج کے حالات موسم ٹھنڈے ہو گئے جناب، بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح سمجھ گئے، موسم ٹھنڈا ہو گیا، اور اس ٹھنڈے موسم میں گرما گرم پکوڑے لے کر جو ہیں وہ شازیہ ملک صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو پہنچ چکی ہیں، گرما گرم چائے اور پکوڑے سموسے، کیا مزہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے یار، کہاں خواہش ہی رہ گئی ہے۔ آفس میں انٹر ہوتے بولی یار آج میں تمہارے لیے دو سموسے آلو کے لائی ہوں اور ایک گرم چائے، کبھی نہیں کرتی نہیں ہے بھائی، یہ کرتی نہیں ہے، میں اتنا کتنی ان کی خوش آمدید کرتا ہوں، ان کے لیے ریڈ کارپیٹ تک بچھا دیتا ہوں، اب تو کارپیٹ ریڈ کی جگہ وہ ہو گیا شیمپین کارپیٹ کلر کا نا، وہ اب آج کل ٹرینڈ وہ چل رہا ہے، ریڈ ویڈ پرانا ہو گیا، اب وہ شیمپین کلر کے فرنیچر ہیں، فرنیچر نہیں اپلائنسز، اور شیمپین کلر کا کارپیٹ۔ چلیں جناب، شیمپین کلر کے کچھ کپڑے وپڑے شاید ان کا اوپر کا جو ٹاپ لگ رہا ہے مجھے، سویٹر وائٹر کارڈیگنس پہنی ہوئی ہیں، شیمپین کلر کا ہی لگ رہا ہے، یہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ساؤنڈ افیکٹ آپ نے سن لیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، شاہدہ جی کیسی ہیں آپ؟
ڈبلو ایس ہم ویسے ہی ہیں،
ویسے دو دن کے بعد بھی آپ ویسے ہی آتی ہیں،
ویسے ہی آتی
ہیں، تو آپ اگلی باری میں ماجد بھائی سے کہوں گا اور آر پاپا سے، ان کو دو دن کی بھی چھٹی نہ دیں،
نہیں نہیں منڈے
مارننگ، انہوں نے ایسے ہی آنا ہوتا ہے دو دن کے بعد بھی۔
اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ میری پتلون اور تمہاری ٹی شرٹ کا کتنا کلر مل رہا ہے،
پتلون میری پتلون تو
میری پتلون میں کہہ رہی ہوں، میری پتلون، کان صاف کراؤ، کام صاف کرو،
پتلون، اچھا میں نے دیکھا نہیں آپ نے پتلون پہنی ہے،
یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا بھائی؟
بس وہ بزی رہتا ہوں نا کام میں، ٹائم پہ ختم کرتا ہوں،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
یہ کوالٹیز ہیں،
ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر منڈے کو کالی ٹی شرٹ پہن کے کیوں آتے ہو بھائی؟ میں نے تم سے
دو دن کے بعد کا جو ہے نا سوگ ہوتا ہے، دو دن چھٹی کے بعد تیسرا دن سوگ، بس منڈے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، یہ منڈے نہیں ہونا چاہیے،
منڈے نہیں ہونا چاہیے یار، پھر
ڈائریکٹ ٹیوزڈے ہونا چاہیے،
مجھے زہر لگتا ہے خود منڈے صبح صبح جب اٹھنا پڑتا ہے نا منڈے کو، اوہ ہو اتنا مجھے زہر لگ رہا ہوتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے منڈے کا گلا دبا دوں،
بس یہ اور رات جو ہے وہ میں کین رکھنا بھی بھول گیا تھا، تو وہ پھر صبح صبح جب مجھے یاد آیا میں نے کہا یار وہ گاربیج کین بھی نہیں رکھا، وہ گاڑی آواز آتی ہے نا گاڑی کی گلی میں سے، میں نے کہا آج تو مارے گی، تو وہ پھر جلدی جلدی اٹھ کے،
اور آج تو برف پڑ رہی تھی ہلکی،
وہ حال تھی ہلکی سی فلری تھی،
کافی سردی تھی آج، -6 تھا ٹیمپریچر،
-6 تھا، تو اب بھی جو ہے وہ سردیاں نہ آئیں، لیکن
وہ تمہاری تو ٹینٹ فریز نہیں ہوئی؟
نہیں نہیں یہ تو پیدا ہی جو ہے -30 میں ہوئی تھی،
اچھا
وہ یہ آدھی ہے، تو اکثر مائی ہوئی بھائی کیپ لگا لے یار کچھ کر لے تیرا برا حال ہو جائے گا، ڈائریکٹ رن وے ہے نا، تو وہ کبھی کبھی لگتی ہے، لیکن بہرحال یہ خون
ٹوپی شوپی پہن کے،
یہ خون جوان ہے،
اچھا اچھا ہم بھی جوان ہو
ابھی، نہیں ہم تو ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا،
اچھا اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر جانے کی پوری تیاری ہے تمہاری؟
اوپر نہیں، ایک گھنٹہ رہ گیا گھر جائیں گے، یہ دیکھا دشمن ہو نا آج، جیسے आप जैसे अगर कुलीग भी हो ना वो ऊपर ही पहुंचा देंगे।
अच्छा अच्छा,
मैं कह रहा हूँ एक घंटे के बाद घर जाएंगे, आप कह रही हैं ऊपर जाओगे।
नहीं मतलब मैं अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में जाओगे, मेरा ये मतलब है ना।
हमारा तो बेसमेंट में ठिकाना है या गैराज में बस।
अच्छा अच्छा, हो कितनी तुम्हारी बुरी किस्मत।
हमारी किस्मत में ऊपर ऊपर का, ऊपर से मैं ऑफिस में बैठता हूँ सारा दिन में ऊपर बैठ के।
हाँ।
बस बाकी बस
मक्खियां
मार लेता
हूँ। हाँ ठीक है।
हाँ, बाकी घर में कहाँ ये मौका मिलता
है। मौका मिलता है, चलो ठीक है। चलो जी, हम आपको सुनाते हैं बड़ी खतरे में नाक खबरें आज। तो आपने बिल्कुल अपनी पेटी बांध लेनी है और आपने हिलना जुलना नहीं है, क्योंकि अगर आप हिले जुले तो फिर कैंप खराब है। ठीक है, आज जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज़ लार्जेस्ट लाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट। अब तो आपको रटे जाने चाहिए ये सारे नाम, इतनी दफा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। एक उनका रेस्टोरेंट जो है वो है मिसिसागा में, उसका नंबर है 9052323663, और एक है ओकविल में, उसका नंबर है 9052262294। और जनाब राजाते भैया जी, जिन्होंने बहुत सारे पैसे बचाए नामिर दे, ठीक है जी, आप भी अपना जो है अफोर्डेबल होम एंड ऑटो इंश्योरेंस इनसे जाके लें। ऑल स्टेट में होते हैं राजा बादशाह जी, इनका नंबर है 6472903773। हज पैकेज एमएक्स ट्रैवल वाले जी बड़ा जबरदस्त हज पैकेज दे रहे हैं, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, यानी साढ़ा तो भी कोई चांस नहीं है जी, ना मिलियन डॉलर दे विच, ना हज पैकेज दे विच, किसी चीज में हमारा चांस नहीं है। अच्छा जी, तो वो कहते हैं अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं आप, तो बहुत सारे वो आपको पैकेजेस देंगे इसके हज के, तो आप इनको संपर्क करें जनाब। इनका नंबर है 4165995200 एंड लीजाज वेयर हाउस सेल। ओहो जबरदस्त 80% ऑफ है जी, इधर जाएं, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं पाको रोबाने एंड टॉम फोर्ड एंड ईव सरोलॉन और ये सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, ये इधर जाएं और इनके आप चीजें खरीदें, पूरे साल के लिए लेकर रखें, क्योंकि बहुत सस्ती होती हैं, तो आप गिफ्ट्स भी कर सकते हैं। इनका नंबर है जी 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, यानी कि नंबर का मतलब ये है कि इनका एड्रेस, और ये इनका है सैटरडे को सुबह 9 से रात 8 बजे 6 बजे तक खुले रहते हैं, संडे को सुबह 10 बजे से 6 बजे तक रहते हैं, और मंडे से फ्राइडे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहते हैं। तो आप प्लीज जाएं, और बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, तो इसका एंजॉय का मजा लें। ओके जनाब, सबसे पहले तो हम आपको खबर सुनाएं, ट्रूडो साहब ने एक किया बहुत ही सरप्राइज विजिट, ये एक डिनर हो रहा था मारा लागो के अंदर, और वहां पे ऐ देखो जी साड़ी कनेडियन टीम पहुंची हुई थी उते, और मारा लागो जरा देखो 5-स्टार होटल लगता है, कार तो लगता ही नहीं है ये ना, तो ये जी इधर पहुंचे हुए थे और यहां पे जो है उन्होंने बात शुरू की, सर ट्रंप साहब हमें आपसे बहुत प्यार है, हम बॉर्डर के ख्यालात रखेंगे, बिल्कुल सही रखेंगे। ट्रंप साहब ने कहा मैं तो बॉर्डर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं कि ये फेंटनल जो है जिससे मेरे मुल्क में इतने डेथ्स हो रहे हैं, इसके ऊपर जो है मेरी टॉप प्रायोरिटी है। लै भाईजान तुसी ते क्या इतना थ्रेट दिता है मासूमा नू कि ये देखो यार, मतलब है तुसी रोज अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हो ट्रंप साहब, ये तो ना करें हमारे मासूम जो कनेडियन गेस्ट हैं उनसे, तो जाहिर है कि फिर हमारे कनेडियन गेस्ट जो है वो बड़े सरप्राइज हो गए। यहां पे ट्रूडो साहब जो है फ्लोरिडा में पहुंचे थे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लॉ और इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं केटी टेलफोर्ड के साथ, और उन्होंने कहा जी कि हमें उन्होंने बताया, हमने ट्रंप साहब को बताया कि ट्रंप साहब फिक्र ना करो, हम एडिशनल ड्रोन्स ला रहे हैं, पुलिस हेलीकॉप्टर्स ला रहे हैं, और इन बहुत सारा जो पर्सनैल है उसको बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, तो हूं ना साडे मुल्को तुहाडे ते ना तुहाडे मुल्को साडे मुल्को ही इलीगली अब कोई भी नहीं आ सकेगा। तो वो कहते हैं जी कि ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, ये जो ड्रग्स के किस्से हैं उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। बहरहाल जी, लोगों ने जब पूछा डोमिनिक लेब्लॉ से कि क्योंकि उनको पता ही है कि ट्रंप साहब ज्यादा पसंद नहीं करते ट्रूडो साहब को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो उनको बहुत पसंद करते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत म्यूचुअल रिस्पेक्ट और वार्म थी, और दोनों लीडरों ने बड़ी अच्छी तरीके से बात की। अब आज जो प्रेस था वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पीए पॉलीएफ के बारे में जब पूछा गया कि ये जो ट्रूडो साहब वहां पे गए उसके बारे में आपको क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जी कि अब मतलब पीए पॉलीएफ साहब जड़े ने ना वो भी उन्होंने भी अपनी कहानी होती है, वो कहते हैं कि ट्रूडो साहब बड़ा पोजिशन ऑफ वीकनेस पे गए हैं वहां पे, ओ पायन खुदा का वास्ता है खुदा का ना लो। बहरहाल जी वो कहते हैं नहीं, बड़े पोजीशन ऑफ वीकनेस पे गए हैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और उसने कहा कि मैं बड़े गेंद करूंगा, तो क्या गेंद आए हैं ओ भाई जान, जो उन्होंने संभाली नहीं अपनी कुर्सी ट्रंप साहब ने, तो गेंद भी क्या आएंगे, वो कुर्सी संभालेंगे प्रेसिडेंट बनेंगे फिर डील होएंगी ना। तो बहरहाल वो कहते हैं जी कि ये जो है बड़े ऐसा कैनेडा का होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर जो कि बड़ा स्ट्रांग हुए और जिसके पास दिमाग हुए और जो जाके कैनेडियंस के लिए फाइट कर सके। ओ पायन, ये सिर्फ मीट एंड लीड था जो है ये ड्रम साहब, ये तो अभी जनवरी 20th को इन्होंने ओथ लेना है तो अजे तो बड़ा टाइम है। तो बहरहाल जी उन्होंने बड़े एतराज इस ट्रिप के ऊपर किए। और जनाब जो हाईवे 11 थी वो चौकर ब्लॉकर थी, क्योंकि आपको पता ही है बड़े तूफान आए थे तो उसकी वजह से बड़े ये क्लोजर्स थे, रोड क्लोजर्स थे, पावर आउटरेज थी और सारा वक्त मस्कोका के खासतौर पे लोग जो है वो शवलिंग करते रहे हैं वीकेंड के ऊपर, क्योंकि जो है 1 मीटर तक वो कहते हैं जी कि स्नोफॉल आई है। एनवायरमेंट कैनेडा कहता है कि ये 140 सेंटीमीटर स्नो जो थी वो ग्रेवनहर्स्ट में आई थी और 125 सेंटीमीटर की ब्रेस ब्रिज में आई है, और उसकी वजह से यह हाईवे 11 जो है बिल्कुल बंद रहा बिटवीन ओरिलिया एंड हंट्सविल, और बहुत सारे लोग तो पानी और फूड और बिजली के बगैर थे फॉर 30 आवर्स। फिर उसके बाद ब्रेस ब्रिज और हेवन ग्रेवनहर्स्ट जो है वहां पे इसके अलावा इतनी सर्दी के मौसम में होते हुए भी बिजली नहीं थी इनके पास और बड़े मुश्किलों से जो है फिर यहां पे आई। ग्रेवनहर्स्ट में तो उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की है। जो प्रीमियर हैं ऑन्टेरियो के डकफोर्ड साहब, उन्होंने कहा जी कि हम अपने सोशल मीडिया पे कहा कि हम जो हैं ऑन्टेरियो में कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं इनके साथ, मस्कोका के साथ, और ओबीपी ने भी कहा कि आप प्लीज जब तक आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ना हो 911 पे कॉल मत करें और जितने भी नॉन इमरजेंसी लाइन है उसके ऊपर कॉल करें दूसरे सिचुएशंस के लिए, और वो नंबर है 1-888-310-1120, दैट इज 1-888-310-1120। अच्छा जनाब ये कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली एक अलेज गैंग मेंबर जो कि यूएसए से आ रहा था और भाग जाना चाहता था यहां पे, और वो पकड़ा भी ना जाता, अननोटिस जाता, लेकिन उसने गलत टर्न ले लिया। अब जब उसने गलत टर्न लिया तो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने इसको रोका, और जब रोका तो पता चला जी कि ये है मेंबर ऑफ मारा साल्वाट्रुचा जो गैंग है उसका ये मेंबर है, और जो है ये भाग रहा था यहां से और कनाडा बॉर्डर पे, फिर उन्होंने जब मैसेज दिया तो वहां यहां पे कनाडा बॉर्डर पे ये पकड़ा गया। वो कहते हैं जी कि ये इसी तरह इससे पहले भी नवंबर 24 को भी एक कमर्शियल ट्रक ड्राइवर जिसकी कि एज 62 ईयर्स थी, इस लड़के की जो एज है ये 24 ईयर्स थी, ये जो नवंबर 24 को बंदा था इसकी एज 62 ईयर्स थी, और इसके भी जीपीएस ने इसको गलत गाइड किया और ये भी कनाडा में एंटर हो गया एक गलत टर्न लेके जब यहां पे आया तो इसका सर्च जब किया तो इसके पास से अनलॉफुल फायर आर्म निकला। जब इसके जो बायोमेट्रिक्स किए तो पता चला जी कि ये तो एक जो है फेलन है, और इसको तो मना किया हुआ है कि आप जो है फायर आर्म्स कैरी नहीं कर सकते। तो मतलब है दो गैंगस्टर जड़े ने फड़े गए गलत, इसीलिए कहते हैं यू टर्न मत करें, गलत टर्न मत लें जिंदगी में, है जी गलत टर्न लेंगे तो फिर आपके साथ ये होएगा। बारा जी दोनों नपेंगे। ऑन्टेरियो जो है जी वो अब कह रहा है कि ये जो इनका प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन ये जो लाने वाले हैं उसकी वजह से, इस रूल की वजह से बाय 2050 ऑन्टेरियो सिस्टम ऑपरेटर जो है उसको 35 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड करने पड़ेंगे। न्यू इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर जो है उसने एक एनालिसिस किया है और उन्होंने कहा कि प्लान तो इनका बड़ा एम्बिशियस है और ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं एमिशंस को, लेकिन उसकी वजह से इनका जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो सिस्टम जो सेटअप कर रहे हैं उसका बिल बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत है, लेकिन हमें लगता है कि प्लानिंग करेंगे भी तो ये ज्यादा फीजिबल नहीं है लुकिंग एट द बिल। उन्होंने कहा जी कि इसकी वजह से ये जो ला रहे हैं नया सिस्टम उसकी वजह से रेजिडेंशियल बिल्स जो हैं वो भी 132 to $168 पर ईयर बढ़ जाएंगे स्टार्टिंग इन ईयर 2033। ऑन्टेरियो एनर्जी मिनिस्टर जो हैं स्टीफन लेचे, उन्होंने कहा जी कि हमने अब फेडरल गवर्नमेंट को किया है, रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है वो ये चेंजेस जो हैं इनके ऊपर जरा गौर करें, और अगर वो ये लेके आना चाहते हैं, हम अगर लाना चाहते हैं क्लीन एनर्जी के लिए तो हमको फिर एटलीस्ट उसमें से 15 बिलियन डॉलर्स दें ताकि हम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट में यूज कर सकें बाय 2050। तो ये जनाब कहानियां हैं। ट्रंप साहब जो हैं जी, उन्होंने सोशल मीडिया अपने के ऊपर थ्रेटन किया है जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनको। उन्होंने कहा जी खबरदार, अपनी ट्रेड जो है यूएस जो करेंसी है उसके अलावा किसी करेंसी में भी यूज की, तो ये जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं अगर उन्होंने यूएस करेंसी में बिजनेस ना किया तो उन सब के ऊपर मैं 100% टैरिफ्स लगाऊंगा। और आपको पता ही है कि ये कंट्रीज कौन से हैं ब्रिक्स के, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई को भी इसके अंदर जो है अब शामिल किया गया है। तो ट्रंप साहब कहते हैं जी कि जो मैं फर्स्ट काम करूंगा जनवरी 20th को, अगर इन्होंने ये जो हमें जो है हमारी वंडरफुल यूएस इकोनॉमी एंड मार्केट है जिसके के अंदर ये आके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और फायदा उठाते हैं, उसको ये टाटा बाय बाय गुड बाय कह सकते हैं और किसी और बुरे कंट्री के साथ ये डील कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पुतिन जो है उन्होंने भी और इंडिया ने भी बड़ी दफा ये कहा है कि हमको अल्टरनेट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम्स जो हैं उनको लाने की जरूरत है। चाइना ने भी इसमें बड़ी दफा कहा है कि हम क्यों यूएस डॉलर में जो है वो करते हैं। अभी आपको पता है बल्कि रिसेंटली इंडिया ने जो रशिया से जो तेल खरीदा था वो रूबल्स में लिया था और जो ईरान से लिया था वो इरानियन रुपी के अंदर लिया था। तो अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जैसे ही आऊंगा जनवरी 20th को, मैं जो कुछ पहले काम करूंगा उसमें यह करूंगा कि तुम लोगों के ऊपर 100% टैरिफ्स लगाऊंगा। तो जनाब ये है जॉर्जिया जो है जी, उसके अंदर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े वीकेंड के ऊपर चलते रहे। 224 लोगों को इसके अंदर डिटेन किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ईयू को ज्वाइन करने की जो टॉक्स हैं उसको सस्पेंड करेंगे। और जो है इसके अलावा जो मुल्क में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि ये सही से जो है वो नहीं हुए हैं। तो रूलिंग जॉर्जियन ड्रीम पार्टी जो है उसने वैसे तो कहा था कि हमने विन किया है, लेकिन लग रहा है कि इन्होंने भी कोई रिगिंग वगैरह की है। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो करना चाहते हैं ये जो, यानी कि जाहिर है कि रूल करना चाहते हैं लेकिन उसकी वजह से मैस प्रोटेस्ट जो है यहां पे आ गए। ऑपोजिशन जो है उसने भी बॉयकॉट किया पार्लियामेंट का और उसने कहा जी कि तुमने ये जो वोट रिग किया है विद मॉस्कोज हेल्प ये बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं, यानी एक एक्सेप्टेबल नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो वीकेंड के ऊपर पार्लियामेंट के सामने खड़े हुए थे, उन्होंने फायरवर्क्स जो है वो मारे पुलिस के ऊपर, फिर पुलिस ने रिटेलिएशन में टीयर गैस और वाटर कैनन उन पर मारा। 113 पुलिस ऑफिसर्स जो है उनको मेडिकल हेल्प चाहिए था और 3 जो थे उनको फिर हॉस्पिटलाइज किया गया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स भी जनाब अचानक से एक सरप्राइज विजिट में यूक्रेन पहुंच गए और यूक्रेन में पहुंचते ही उन्होंने कहा जी कि हम एडिशनल मिलिट्री सपोर्ट देंगे यूक्रेन को वर्थ 680 मिलियन यूएस डॉलर्स। और उन्होंने कहा जी कि मैं मुलाकात अब करूंगा प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ और उनको मैं बिल्कुल ये गारंटी दूंगा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे और नेटो आपको डिफेंड करेगा अगेंस्ट रशियन एडवांसमेंट। उन्होंने कहा जी कि यूक्रेन को अपनी टेरिटोरी को वापस लेना है क्योंकि 20% जो इनकी टेरिटोरी है ये ऑलरेडी उसके ऊपर रशिया ने कब्जा किया हुआ है। तो वो कहते हैं जी कि अभी ब्रसल्स के अंदर जो इस वीक में मीटिंग होने वाली है उसमें मैं कहूंगा कि यूक्रेन जो है उसको नेटो का हिस्सा बनाया जाए। इसके साथ साथ जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालीना बेरबॉक जो है उन्होंने एक्यूज किया है चाइना को कि तुम कॉन्स्टेंटली रशिया को आर्म्स दे रहे हो और ईयू की जो पीस है उसको खराब कर रहे हो, यानी कि मतलब इनादी हालत देखो। जर्मनी जो है वो आर्म्स दे सकता है वो उसको जेलेंस्की को यूक्रेन को और उससे जो है रीजन के अंदर पीस खराब नहीं होएगा, लेकिन अगर रशिया जो को अगर चाइना आर्म्स दे रहा है तो उससे पीस खराब होएगा। वाह 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 क्या बात है भाई, क्या आप लोगों के कलर्ड चश्मे हैं और क्या कलर्ड आपके जो है देखने के तरीके हैं और माशाल्लाह कितने आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यानी हम आर्म्स देंगे मगर तुम मत दो, हैं रशिया को कोई आर्म्स ना दे लेकिन हम यूक्रेन को दबा दब देंगे सारे। वाह क्या बात है ऐसे। ऑस्ट्रेलियन पुलिस जो है जी उसने 13 लोगों को अरेस्ट किया है और उन्होंने कहा है जी कि वी हैव बस्टेड द लार्जेस्ट एवर कोकेन स्मगलिंग इन द कंट्रीज हिस्ट्री। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस जो उसने चार्ज किया है 11 मेन और 2 जुवेनाइल जिनकी उम्र 18 साल से कम है क्योंकि ये जो इनकी एक जो फिशिंग बोट है इसको ये लोग ट्रैवल कर रहे थे जो कि जा रही थी मदरशिप के साथ मिलने के लिए ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, जबकि पुलिस ने इनको रोका। जब रोका तो उसमें से 2.3 टन्स ऑफ कोकेन जो है निकला है जिसकी के वैल्यू है 494 मिलियन यूएस डॉलर्स। और वो कहते हैं जी कि ये मंथ्स लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हमको समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रग्स कहां से आ रहे हैं और फिर पता चला कि एक मोटरसाइकिल गैंग जो है वो ये सारे ड्रग्स स्मगल करके कंट्री के अंदर ला रहा है। अगर ये सारे के सारे चार्जेस इनके ऊपर आ गए तो इन सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। और जनाब जो वीकेंड के ऊपर सबसे बड़ी खबर रही इंटरनेशनल मीडिया में वो था ये जो बहुत सारे रेबल्स हैं जो इन्होंने जो सीरिया के अंदर अब अटैक्स जो हैं गवर्नमेंट पे शुरू कर दिए हैं। तो इसके जवाब में आज जो है एज वी स्पीक मंडे को आज से फिर जो रशिया है उसकी हेल्प जो थी वो सीरिया ने मांगी थी और रशिया ने आज से जो है एयर स्ट्राइक्स जो है शुरू कर दिए। सोचा यह जा रहा था कि रशिया जो कि यूक्रेन के साथ बिजी है तो शायद अब वो सीरिया के साथ खड़ा नहीं रह जाएगा, लेकिन रशिया ने इनको बिल्कुल जवाब दिया और ये जितने रेबल्स थे जो कि एडवांस कर रहे थे और इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हमने एलेप्पो जो सेकंड बड़ा सिटी है सीरिया का उसको हमने कब्जा कर लिया, उनके ऊपर अटैक्स किए। इस स्ट्राइक में 12 लोगों की डेथ्स हुई जब उन्होंने एक हॉस्पिटल जो था एलेप्पो में उसके ऊपर स्ट्राइक किया। इसके अलावा इदलिब में जो किया उसके अंदर भी 8 जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ्स हुई, 50 लोग जो है वो जख्मी हुए। और अब ये जो ग्रुप था जो रेबल्स का ये हमा की तरफ बढ़ रहा था और उन्होंने कहा जी कि हमने हमा के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सीरियन गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी एलेप्पो के ऊपर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम उनका जो है कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया है और ये सरप्राइज ऑफेंसिव था जो कि ऑपोजिशन ने किया क्योंकि उनको लगा कि आसपास की जो इनकी प्रॉक्सीज हैं जैसे कि ईरान जो है उसके ऊपर जो है दूसरे दबाव हैं, हिजबुल्ला जो है वो लेबनान में बिजी है और रशिया जो है वो यूक्रेन में है तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन फौरन जो है इनके ऊपर इनके साथ जो है सारों नहीं, हिजबुल्ला ने भी और बाकियों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये जो अटैक था ये इस्लामिक तो नहीं कहना चाहिए बस मिलिटेंट ग्रुप ही कह रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम जो है इन्होंने किया था। ये एक एलाइड फैक्शन है और ये जो है इसको कहा जाता है कि अलेजली इट इज बैक्ड बाय तुर्की, लेकिन ये एक अलकायदा की जो है ऑफशूट है और उससे तोड़ के इन्होंने अपना एक बनाया। ये मोर इन्होंने कहा जी कि हम मॉडरेट्स हैं, 300 इंक्लूडिंग 20 सिविलियंस जो है अभी तक उनकी जब से वीकेंड से ये शुरू हुई है स्ट्राइक्स तो उसमें उनकी डेथ हुई है। रशिया जो है उन्होंने जब ये स्ट्राइक्स किए हैं तो आफ्टर 2016 तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि काफी उन्होंने जो है इनके ठिकाने जो है मेन उसके ऊपर किया है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वो जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय द टर्किश कुर्दिश फोर्सेस और कुर्दिश फोर्सेस जो है उनको आपको पता ही है कि पसंद नहीं करता है तुर्की है क्योंकि वो कहते हैं जी ये पीकेके वालों के साथ मिलकर हमारे मुल्क में आके जो है हमला करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता सीरियन मिलिट्री जो है उसने कहा जी कि हम जो है एक काउंटर ऑफेंसिव प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेटेजिक विदड्रॉल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बशार अल असद जो हैं उन्होंने उनको कहा गया है कि भई आप अपने लोगों के साथ रिकनसाइल करें और एक डायलॉग करें। यह बात जो है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने कही है। उन्होंने कहा कि तुर्की आपकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अगर कुर्डिश सीरियन कर्ड्स ने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर हम हेजिटेट नहीं करेंगे टू इंटरवीन इन सीरिया। इसके साथ साथ आज सुबह यूएस और यूएई जो है वो भी डिस्कस कर रहे थे कि हम अल असाद को कह सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है सैंक्शन हम खत्म कर सकते हैं अगर तुम ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म करो और लेबनान के हिजबुल्ला से अपने जो है ताल्लुकात खत्म करो और उनको वेपन्स ना दो। पुतिन और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिश्कियां जो है वो भी आपस में उन्होंने बातचीत की है सीरिया के मसले के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल जो लेजिटिमेट सीरियन गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय गेयर पेडरसन जो है उन्होंने कहा जी कि मैं तो बड़े अरसे से बता रहा था कि ये जो इनको खुला छोड़ा हुआ है ये हॉस्टिलिटीज जो है बढ़ेंगी और अब दोनों साइडों को अर्ज करते हैं कि बैठें और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ टू प्रोटेक्ट सिविलियंस और इनकी आप जो है वो आप एक जो है आपस में बातचीत करके इसको खत्म करें। यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सलिवन उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं है कि ये जो ईरान रशिया और हिजबुल्ला के जो डिट्रैक्टर्स हैं इन्होंने आके इनके ऊपर अटैक किया है और इनको लग रहा था कि ये डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये हमें तो नहीं लग रहा था कि ये डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमें तो लग रहा था कि दे आर वेरी मच देयर और कभी भी वो करेंगे। असल में हुआ ये था कि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है 2254 2015 में लाई गई थी जिस वक्त के सीरियन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसको खत्म करने के बाद ये रेजोल्यूशन ये कहती थी कि आप इलाके के अंदर पीस लाएंगे और फिर इलेक्शन करेंगे, लेकिन बशार अल असद ने इलेक्शन नहीं करवाए। तो लोग बेसिकली जो है वो इनकी जो फैमिली है हाफिज अल असद और बिशार अल असद उससे जो है बड़े तंग हैं, वो कहते हैं जी कि ये बड़े फैशिस्ट हैं और इनको जो है अब इनका रूल खत्म करके जो अरब स्प्रिंग आया था 2011 में उस पर वो सोचते थे कि हमारे मुल्क में भी डेमोक्रेसी आएगी जो नहीं आई। इसके बाद जी हिजबुल्ला ने आज मंडे को कहा कि हमने डिफेंसिव स्ट्राइक्स की हैं क्योंकि इसराइल जो है सीज फायर के वायलेशन जो है कॉन्स्टेंटली कर रहा है और कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये पहला बड़ा अटैक था, जबकि आपको पता ही है कि यूएस ब्रोकर डील जो थी लास्ट वीक कराई गई थी, जिसमें कि मंथ्स लॉन्ग ये जो वॉर चल रही थी दोनों के बीच में उसको खत्म कराया गया था और कहा गया था कि भई ये आप अटैक एक दूसरे पे नहीं करेंगे, लेकिन हिजबुल्ला ने कहा कि इसराइल कॉन्स्टेंटली वायलेशन कर रहा है सीज फायर की और हम पे अटैक कर रहा है इन साइड आके लेबनान में, तो इसलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम भी इनके ऊपर करें। ये जो हुई है ये जो अटैक्स इसराइल के, इसमें और काफी सारे लोग मारे गए इंक्लूडिंग लेबनीज आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, और इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि हिजबुल्ला ने दो रॉकेट्स लॉन्च किए थे लेकिन उसमें कैजुअल्टीज कोई नहीं हुई है और ये जो रॉकेट्स थे ये ऊपर एरिया में जाके गिरे थे। तो जनाब ऐसे है, फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वहां पे उथल पुथल इस वीक में हो सकती है, क्योंकि वहां पे फार राइट पार्टीज जो हैं वो कह रही हैं जी कि हम जो है वो इस वीक में किसी भी वक्त एक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है प्राइम मिनिस्टर मिशेल बर्नियर के खिलाफ लेकर आ सकते हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये जो उन्होंने बजट दिया है हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं कराई गई और ये बड़ा ही बेल्ट टाइटनिंग है और इसमें जो है हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। अगर ये पास हो गए तो एमपीज जो हैं जो मोशन ये लेकर आ सकते हैं वेंसडे के दिन नेशनल असेंबली के अंदर कि ये गवर्नमेंट को खत्म किया जाए और फोर्स भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो रिजाइन करें। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर है मिशेल बर्नियर, इनको अपने ओहदे पे आए हुए अभी सिर्फ 2.5 मंथ्स ही हुए हैं। न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है उसने भी वॉर्न किया है कि वो भी लेकर आ सकता है नो कॉन्फिडेंस मूव ऑन द कंट्रोवर्शियल 49.3 कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज जिसने के फोर्स किए, जिसको के फोर्स किया गया था थ्रू सोशल सिक्योरिटी लॉ। तो उन्होंने कहा जी कि ये ना तो बर्नियर साहब ने अपने कोई वादे पूरे किए हैं ना कोई कुछ और करें, हालांकि बर्नियर साहब ने कहा है कि मैं आपके साथ मिलकर बैठ के बात करने को तैयार हूं। तो अब देखेंगे वेंसडे को जी इसकी गिरती है गवर्नमेंट फ्रांस की कि नहीं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चोपड़ा ज्वेलर्स। चोपड़ा ज्वेलर में आपको पता ही है बड़ी जबरदस्त गोल्ड सिल्वर डायमंड प्लेटिनम के बड़े लेटेस्ट और एलिगेंट डिजाइन होते हैं। आपके घर का कोई भी इवेंट है तो आप उसके लिए उनको कॉल करें और इनका नंबर है 416-744-7534। इसके अलावा जी मुल्तानी सोन हलवा जबरदस्त फ्रेशली मेड यहां पे हियर इन कैनेडा, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप देख सकते हैं मुल्तानी हलवा डिलाइट्स .com पे जाके और अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी इवेंट आ रहा है। इनका नंबर है 416-270-4439। एंड जनाब ओपन माइक कफे, देसी खाने मजे के आपको खाने हैं तो नसर शाह के इस रेस्टोरेंट पे जाएं, इसका नंबर है 416-526-6800 एंड स्पीयर एंड मके। स्पीयर जब सर्दियां आ गई हैं जनाब, जबरदस्त किस्म के इनके पास वुलन कैशमीयर और विंटर कोट्स और इटालियन वुल के ट्राउजर्स एंड इजिप्शियन कॉटन के शर्ट्स और बहुत इटालियन वुल के सूट्स आ गए हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा अच्छा हाई एंड कपड़े चाहिए हैं, जैसे कि अगर आप खरीदते हैं बर्बेरीज के या के ह्यूगो बॉस के, तो आपको इनके भी कपड़े एग्जैक्टली वही इनकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं तो आपको पसंद आएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज एक 10 मेंबर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई है टू आइडेंटिफाई वो लोग जो कि इन्वॉल्व हैं इसके अंदर जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा वो कहते हैं जी कर रहे हैं और वैंडलिज्म और टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के मुताबिक बहुत सारे डोमेस्टिक और फॉरन बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कहते हैं कॉन्कॉक्टेड और बेसनेस और इंसाइटिंग न्यूज जो है वो फैला रहे हैं जो कि वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रहने के लिए और पॉलिटिकल उनके अपने जो बनाए रखने के लिए ये लोग जिनके के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और जो फॉरेन ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं इनको ट्रैक डाउन करना बहुत जरूरी है। इस मौके पे चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो थी उनको हेड बनाया गया इस टास्क फोर्स का और इसके अंदर जो है टास्क फोर्स में है ज्वाइंट सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ इंटीरियर एंड इन्फॉर्मेशन आईटी मिनिस्ट्री आईजी इस्लामाबाद डीआईजी डायरेक्टर ऑफ साइबर क्राइम्स विंग ऑफ एफआईए आईबी आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस सब इसका हिस्सा है। इसके साथ साथ ये भी खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं दिसंबर 3 से 4 के बीच में सऊदी अरेबिया का विजिट करेंगे फॉर द फर्स्ट वाटर समिट। तो बिजी स्केड्यूल है जी प्राइम मिनिस्टर साहब का। इमरान खान साहब जो हैं जी उनको अब फ्रेश केसेस में अरेस्ट किया गया है क्योंकि ये जो इस्लामाबाद के अंदर अभी जो रीसेंट पीटीआई के प्रोटेस्ट थे उस सिलसिले में एटीसी ने इशू किए हैं इनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इनके इनकी बीवी केपी के चीफ मिनिस्टर के एंड 93 अदर्स के। इनको आज प्रेजेंट किया गया है एटीसी जज के सामने अडियाला जेल में आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ 6 डेज फिजिकल रिमांड इन केस ऑफ पीटीआई सेप्टेम्बर 28 प्रोटेस्ट इन रावलपिंडी और प्रोसिक्यूशन ने लेकिन फिजिकल रिमांड को आगे बढ़ाने का कोई भी जो है वो एक्सटेंशन के लिए उन्होंने सीख नहीं किया गवर्नमेंट से। ये केस जो थे ये लिखे गए थे न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि पिंडी के अंदर जो वायलेंस इंसाइट की थी वो खान साहब ने की थी। एटीसी के जज अमजद अली खान ने फिर खान साहब को जो है कहा कि अच्छा फिर इनको जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए फॉर न्यू केसेस रजिस्टर्ड इन वेरियस पुलिस स्टेशन। इसके साथ साथ जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौर अली खान, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने ऑर्डर्स दिए हैं कि ये जिस किसी ने क्रैक डाउन किया है पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट उनके खिलाफ एक जो है एक रेजोल्यूशन लेकर आई जाए नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर, क्योंकि उनको बताया गया था कि 12 जो पार्टी मेंबर्स हैं उनकी डेथ्स हुई हैं, रेंजर्स की और पुलिसमैन जो हैं उनकी भी डेथ्स हुई हैं। आज मीडिया से बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा जी कि ये बुलेट्स जो हैं ये बिल्कुल फायर नहीं करनी चाहिए थी, या तो संज्ञानी में या तो कहीं और पे, और उन्होंने बड़ा कंडेम किया जो कोई भी इसमें जिसने कि ऑर्डर दिए जिसने कि फायरिंग कराई लोगों के ऊपर जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व थे। एक फ्रेश ऑडियो क्लिप आया है जी पीटीआई के लीडर अली मोहम्मद खान का, जिसमें कि वो जो है बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट फियास्को हुआ है इनका पीटीआई का उसके ऊपर, और उन्होंने एक टीवी शो के अंदर कंफर्म किया कि हां जी ये ऑडियो लीक जो है ये मेरी ही है, जिसके के अंदर वो पूछ रहे हैं कि भाई इमरान खान ने तो ऑर्डर दिया था ये जितने भी प्रोटेस्ट कैंप जो था वो संगजियानी के अंदर लगाना था, डी चौक में नहीं लगाना था, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किसने आपको कहा कि डी चौक जाएं और जो है वो वहां पे जाके आप धरना दें। हमने तो वो कह रहे हैं कि जी खान साहब ने तो कहा है कि ये जो है वहां पे संगजियानी में पहुंचने के बाद पार्टी की लीडरशिप जो है वो डिसाइड करेगी कि सिट इन कहां पे करना है। ये ऑडियो लीक जो है इसके अंदर वो सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि भई ये जो पार्टी जो है ये संगजियानी के अंदर ग्रुप करे, तो अली मोहम्मद खान ने पूछा कि अगर खान साहब की इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी तो फिर ये किसने ये प्लान बदला। उन्होंने कहा जी कि ये बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी वहां पे थे और दूसरे लोग भी थे, और खान साहब ने ये खास तौर पे कहा था कि मैं हेरिडिटरी पॉलिटिक्स के बेइंतहा खिलाफ हूं, तो फिर ये कैसे हुआ कि उनकी बहन जो है अलीमा खान उन्होंने कहा कि भई आप डी चौक जाएं, और इसी तरह बुचरा बीबी ने भी कहा कि आप लोग डी चौक जाएं जब उसके उसके जो थे वो बड़े क्लियर किस्म के इंस्ट्रक्शंस थे उसको लीडरशिप को, तो लीडरशिप ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी कि जब मैंने बताया कि बुचरा बीबी भी वहां पे थी तो वो बड़े हैरान हो गए, वो कहते हैं जी मैंने तो बुचरा बीबी को बिल्कुल इंस्ट्रक्ट नहीं किया था कि आप प्रोटेस्ट के अंदर जाएं, और जो है इस सारी बात का जो जिक्र है उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर गौहर को दिया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी खान साहब के साथ ये एग्री किया था, तो फिर किसने ये जुर्रत की कि खान साहब के ऑर्डर्स ना मांगें और संगजियानी के अंदर ना रुकें, और बीबी जो है वो या उनकी बहन जो है वो डिसीजंस बनाएंगे और पार्टी उनकी सुनेगी, जबकि बैरिस्टर सैफ ने बहुत क्लियरली बता दिया था कि खान साहब के ऑर्डर्स जो हैं वो क्या हैं। इसके साथ साथ जो गंडापुर साहब हैं आज उनसे पूछा गया कि भई अब आप कोई और जलसे वलसे निकालने का प्लान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि नहीं मैं कोई जलसे निकालने का प्लान नहीं कर रहा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त जो पार्टी वर्कर्स की डेथ हुई है 22 की उनको हम फाइनेंशियल हेल्प देंगे उनकी फैमिलीज को, और इसके साथ साथ जो लोग इंजर हुए हैं उनको भी हम ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन इसके अमिड ऑल ऑफ दिस जो जेल पीटीआई के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने आज जरा रिकंसिलिएटरी जो है वो टोन अपनाई। एटीसी के सामने जब लाहौर में वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि एक नेशनल रिकंसिलिएशन होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल जो है वो स्टेबिलिटी आए, और मैं कहता हूं कि जितने भी सेनर माइंड्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज में वो बिल्कुल बैठें और एक नेशनल डायलॉग जो है उसको चलाएं। तो लग रहा है कि बेचारे शाह महमूद कुरैशी भी हुण बस हो गई है जेल दे विच बेचारा, तो ये जी है और मुश्किल है जी मुश्किल है। आपने कासिम सूरी की ट्वीट्स देखी होंगी वीकेंड के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जी कि खान साहब जो हैं उनके मुंह के ऊपर सुबह के ऊपर वक्त एक काला कपड़ा डाल दिया जाता है और शाम को वो उठाया जाता है और एक छोटे से होल में उनको रखा हुआ है, तो मतलब है व्हाट इज दिस। अच्छा जनाब, एक यंग पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर जो है और एक सोल्जर जो है उनकी डेथ हुई है जब वो जो है खवारिज जो है ये टेररिस्ट ग्रुप इसके साथ फाइट कर रहे थे, और इसमें जो 8 खवारिज के बंदे हैं उनको भी मारा गया है इन 2 डिफरेंट ऑपरेशंस इन केपी। इंटेल बेस्ड ऑपरेशन जो कंडक्ट किया गया था बका खेल में बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ट्रूप्स ने एंगेज किया इनके साथ खवारिज के साथ और 5 उनके टेररिस्ट मारे और 9 को इंजर किया। इसमें सिपाही इफ्तखार हुसैन जिसकी उम्र 29 ईयर्स की झंग से थे उनकी डेथ हुई है। एक और ऑपरेशन जो शागाई केपी में हो रहा था उसमें 3 खवारिज की डेथ हुई है, 2 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया है, लेकिन इसके अंदर कैप्टन मोहम्मद जो زہیب الدین جو ہیں 25 ایئرز ان کی ایج تھی، یہ لاہور سے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن چار ٹیررسٹ جو ہیں ان کو بھی مارا گیا ہے. ایک اور جو ہے گن بیٹل ہو رہی تھی شیرانی کے اندر، وہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے ایک آپریشن کیا مغل کورٹ میں اگینسٹ دا آرمڈ ملیٹنٹس، اور وہاں پہ بھی کافی ملیٹنٹس کو مارا. کراچی کے اندر آج بھی انٹرنیٹ جو یوزرز ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا تھا، کیونکہ انٹرنیٹ بالکل کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا اور براؤزنگ نہیں ہو رہی تھی، ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے تھے، چیزیں شیئر نہیں ہو رہی تھیں، واٹس ایپ نہیں چل رہا تھا، اور رپورٹس آ رہی تھیں کہ بہت زیادہ پرابلم ہے. یہ جو ایک سائٹ ہے ڈاؤن ڈیٹیکٹر ڈاٹ کام، اس نے بھی کہا جی کہ واٹس ایپ کے جو آؤٹ ریجز ہیں وہ 9 AM سے صبح سے شروع ہوئے تھے، اور یہ آج سیکنڈ ڈے ہے جس میں یہ پرابلمس تھی. ایریاز جو ہٹ ہوئے تھے وہ تھے صدر، لیاقت آباد، ایف بی ایریا، گلشن جوہر، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آس پاس کے جو نیبرہڈز ہیں وہاں پہ بھی پرابلم تھی. یہ پرابلم زیادہ تر فیس کی فری لانسرز، ڈیجیٹل مارکیٹرز، اور دوز ورکنگ فرام ہوم اینڈ اسٹوڈنٹس اٹینڈنگ آن لائن کلاسز، اور اس کے لیے اتارٹیز نے کوئی بھی ریزن نہیں دیا ہے. ایک کتاب آئی ہے جی جو فارمر جرمن چانسلر ہیں اینجلا مرکل کی، فریڈم میموئرز 1955 to 2021، جس میں کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کی ملاقاتیں مودی جی سے ہوئی تھیں، اور اس میں انہوں نے مودی جی کو بتایا تھا کہ جب سے آپ ملک کے پرائم منسٹر بنے ہو اس وقت سے مسلمانوں کو پری ڈومیننٹلی اور کرسچنز کو بھی اٹیک کر رہی ہے آپ کی ہندو نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں، اور ہندو نیشنلسٹ جو ہیں، تو آپ اس کا کچھ کریں. جس کے جواب میں اینجلا مرکل کہتی ہے کہ مودی جی نے بالکل ڈینائی کر دیا کہ ایسا ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں ریلیجس ٹالرنس ہے، اور لیکن وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے جب اپنی فیکٹس فائنڈنگ کی تھی تو ہمیں پتا چلا کہ انفارچونیٹلی دیٹ واز ناٹ دا کیس. اور وہ کہتے ہیں جی کہ آج بھی ہمارا ڈر ہے کہ یہ ریلیجس فریڈمز جو ہیں یہ ختم کی جا رہی ہیں انڈیا میں، اور ڈیموکریسی کو جو ہے کافی خطرہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ میری جب پہلی میٹنگ مودی جی سے اپریل 2015 میں جرمنی میں ہوئی تھی، تو مودی جی کو ہمارے جو ویژول ہیں افیکٹس ان کو بڑے ان کو پسند آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں ایک الیکشن کیمپین چلانا چاہتا ہوں، اور میں ایک اسٹوڈیو سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پھر اپنے ملک میں انہوں نے کہا تھا جی کہ میں جو الیکشن ریلیز میں بات کر رہا ہوں اس میں میرے جو ہولوگرامز ہیں وہ ریز کیے جاتے ہیں تقریباً 50 ڈفرنٹ لوکیشنز پہ، جہاں ہزاروں لوگ جو ہیں میرے ہولوگرام کو دیکھتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کا یوز جو ہے 2014 سے کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا کے بارے میں کافی کنسرنس ہیں. اچھا جی، بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں کانسٹنٹلی لڑائی چل رہی ہے. سب سے پہلے تو آج بی جے پی نے ہٹ کیا کانگریس کو، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اتنے ہی ناخوش ہو یہاں کے جو ہے پول پروسیس سے اور ای وی ایم مشین سے، تو پھر سب سے پہلے تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ راہل گاندھی اور ان کی بہن پرینکا گاندھی واڈرا جو ہیں وہ سب سے پہلے ریزائن کریں، اور اس کے بعد پھر اتارٹیز کو کہیں کہ پیپر بیلٹ ہونا چاہیے، تو پھر اٹ ول میک سینس. یہ بات جو ہے آج بی جے پی کے جو اسپوکس پرسن ہیں گورب بھاٹیا، انہوں نے آج رپورٹرز کے ساتھ کی، اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کی بات جو ہے ایمٹی ورڈز رہ جائے گی. کانگریس جو ہے اس کو ان معاملوں میں اگر اتنا ہی ان کو دکھ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک سے نہیں چل رہی، تو یہ کورٹس میں جائیں تاکہ یہ پول پروسیس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کر سکیں. اور سپریم کورٹ نے تو آلریڈی کہا ہے کہ جو پولز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور انٹیگریٹی آف ای وی ایمز پہ کورٹ میں یہ آواز اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے جواب میں پھر کانگریس کے پریزیڈنٹ ملک ارجن کھرجے جو ہیں انہوں نے کوشچن کیا ای وی ایمز کو، اور پھر بھاٹیا صاحب نے کہا کہ جس دن پرینکا گاندھی جو ہیں وہ اوتھ لے رہی تھی لوک سبھا ایم پی کا، اسی دن جو ہے ملک ارجن کھرجے صاحب اس پہ کوشچن کر رہے تھے. تو یہ جو ہے نا کانگریس، یہ صرف ہسٹری بکس میں رہ جائے گی. اچھا، کھرجے صاحب نے پھر بڑا سلام کیا مودی جی اور بی جے پی کو، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے ہیں دونوں، نہ مودی جی نہ بی جے پی، کہ کسی طرح سے انڈیا کی یونٹی جو ہے اس کو خراب کیا جائے، اور کامن مین کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں ہے، اور ملک میں ہیٹریڈ بڑھا رہے ہیں، اور کانگریس جو ہے لیکن اس ہیٹریڈ کے خلاف کام کرتی رہے گی، اور ہم جو ہے یہ لیکن اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم پالیٹکس میں رہیں تو آپ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کریں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہیں کہانیاں. अच्छा जनाब, मेरे बड़े फेवरेट सिंगर हैं, बड़े बहुत बड़े म्यूजिक आइकॉन हैं, आपको पता ही है कि एल्टन जॉन। एल्टन जॉन इज 77 इयर्स ओल्ड और आज इन्होंने जो है बड़ी एक दुख की बात बताई है। ये एक चैरिटी गाला परफॉर्मेंस थी, द डेविल वेयर्स प्राडा, उसके ऊपर थे, तो आज उन्होंने वहां पे खड़े होकर कहा कि भई मेरी जो राइट आई है वो कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस उसके अंदर आ गई है और बाकी भी मेरी आंखें जो हैं वो ब्लाइंडनेस की तरफ जा रही हैं, लेकिन मैं फिर भी ये जो परफॉर्मेंस होती है उसको मैं सुनना बड़ा एंजॉय करता हूं। इसके बाद उन्होंने बड़ा क्रेडिट किया अपने हस्बैंड डेविड फर्निश को और उन्होंने कहा कि वो हर मौके पे मेरे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा जनाब, ये जो सबसे पहला जो बॉलीवुड का स्टार था जिसने के 200 करोड़ से ज्यादा कमाए थे वो कौन थे? आप सोचते होंगे शाहरुख खान या के सल्लू भाई, नहीं, वो थे जनाब आमिर खान। आमिर खान जो हैं बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स बने थे जब उन्होंने अर्न किया था 275 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल फिल्म, दैट वाज दंगल 2017। इस फिल्म ने 1300 करोड़ कमाए थे जनाब चाइना के अंदर, और ये ह्यूज अमाउंट जो था इसके जो प्रॉफिट्स थे उसमें से फिर जो है ये आमिर को दिए गए थे। वो कहते हैं जी कि आमिर जो है इज द किंग ऑफ बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस हिट्स। गजनी जो थी उस वो सबसे पहली मूवी थी जो कि 100 करोड़ के क्लब में दाखिल हुई थी इन 2008, और उसके बाद उसने बहुत सारे दूसरे भी जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक किए, जैसे कि 400 करोड़, 600 करोड़ जो उसकी हिट्स आई थी लाइक 3 इडियट्स, PK एंड धूम 3। तो सबसे ज्यादा पैसे जो थे किसी जमाने में आमिर खान ने कमाए थे। और जनाब, जिंदा अगर रहना है बॉलीवुड में तो सल्लू भाई को छेड़ने का नहीं। ये कौन है जिसने छेड़ दिया सल्लू भाई को? कविता कौशिक। कविता कौशिक ने जनाब आज कहा कि विवेक ओबरॉय की क्या बात है, क्या जबरदस्त इसने अपनी 1200 करोड़ नेटवर्थ जो है बनाई है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और कुछ लोग तो जो हैं वो सिर्फ स्वैग और दादागिरी और रोस्टिंग से ही पैसा कमाते हैं। अब इन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन लोगों को पता चल गया कि इस नाटी लड़की ने सल्लू भाई को छेड़ा, सल्लू भाई को छेड़ा। और वो कहती हैं जी कि विवेक, ये कहती हैं जी कि विवेक ओबरॉय जो है वो हाईएस्ट, वो हायर, उनकी जो वैल्यू है हायर है देन रणवीर कपूर और अल्लू अर्जुन, और उन्होंने कहा जी कि ये औरतों की इज्जत के लिए खड़े होते हैं और बड़े जबरदस्त स्टार हैं। अच्छा, अब लोगों को कैसे लगा कि सल्लू भाई के बारे में ये कह रही हैं, क्योंकि इसकी कविता की एंट्री जो बिग बॉस 14 हुआ था उसमें एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ये आई थी और उसके अंदर लोगों के साथ बड़ी इनकी लड़ाइयां हुई थी और बड़े ट्रोल्स हुए थे। तो ये कहती हैं जी कि जिस वक्त सल्लू भाई के सामने हम जाते थे तो मैं उसको कुछ बताने की कोशिश करती थी तो उसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता था मेरे साइड की स्टोरी सुनने में, वो हमेशा दूसरों की सुनता था, तो इसलिए ये जल गई हैं जी। तो इन्होंने सल्लू भाई को ललकारा है, बस बाजी फिर थोड़ा फिल्मी करियर के करियर पे काटा पड़ने लगे हैं जी, बस टाटा बाय बाय करो। अब सल्लू भाई के साथ यानी दरिया में रह के मगरमच्छ के साथ बैर, ये तुमने कैसे किया नादान नादिया? तो बहरहाल जी, अब देखेंगे क्या होगा। और जनाब, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन जो है उन्होंने इंडक्ट किया है पाकिस्तान के जान शेर खान को इन द हॉल ऑफ फेम स्पेशल इंडक्शन इवनिंग एट हांगकांग फुटबॉल क्लब। जान शेर जो है वो थर्ड प्लेयर है टू बी इंडक्टेड, और इससे पहले भी एक और भी पाकिस्तानी का नाम है। तो अब पाकिस्तान से इस हॉल ऑफ फेम के अंदर, स्क्वॉश हॉल ऑफ फेम में, दो पाकिस्तानी आ गए हैं। पहले जो थे वो जहांगीर खान थे। जान शेर जो है उनका भी बड़ा इलस्ट्रेटस करियर था, इलस्ट्रियस करियर था इसमें अपनी स्क्वॉश जो है उसके अंदर, और इन्होंने 8 वर्ल्ड ओपन जीते हैं, 6 रिकॉर्ड है जो कि 6 ओपन ब्रिटिश ओपन टाइटल्स जीते हैं, और इन्होंने अपने करियर के मोस्ट फाइनल्स खेले हैं 118, और इन्होंने 99 टाइटल्स जो हैं वो विन किए हैं। किसी जमाने में ये फॉर 97 मंथ्स, कितने साल हो गए 97 मंथ्स आमिर, 97 मंथ्स तक ये वर्ल्ड नंबर वन रहे थे। 8-9 साल ये जो हैं वर्ल्ड नंबर वन रहे जहांगीर खान के बाद, तो जनाब बिग थिंग फॉर हिम। और जनाब आपकी मोहब्बतों की नजर, ये खबर, आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं बीसीसीआई के जय शाह साहब। तो अब आईसीसी में किसकी चलेगी हैं गंदे बच्चों? अब सिर्फ हिंदुस्तान की चलेगी, ठीक है जनाब। तो جنہوں نے جو ہے جے شاہ صاحب کو جب آئی سی سی کا چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا جی کہ دس از اے ویری ایکسائٹنگ ٹائم, جبکہ ہم لاس اینجلس 2028 اولمپک گیمز کے لیے پریپئر کر رہے ہیں اور اس کے اندر کرکٹ بھی آئے گی اور فینس جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس گیم کے ساتھ بڑا انگیج کرتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کی جو کرکٹ ہے اس کو بھی ہم تھوڑا بڑھاوا دیں. انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر اس گیم کے اندر کرکٹ میں جو ہے بڑا ہی پوٹینشیل ہے گلوبلی, پوٹینشیل تو ساڈے وچ بھی بڑا ہے پر کوئی دیکھ ہی نہیں. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں اس گیم میں بڑا پوٹینشیل, ہمیں گیم پہ کانسنٹریٹ کرو, گیم پہ کرو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس گیم میں بڑا کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ گلوبلی اس میں بڑا پوٹینشیل ہے اور میں بہت کلوزلی آئی سی سی کی ٹیم کے ساتھ کام کروں گا, لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے کہا آئی سی سی کی ٹیم کے ساتھ کلوزلی کام کروں گا اور بہت ساری اپرچونٹیز دیکھوں گا اور اس گیم کو نیو ہائٹس پہ لے کے جاؤں گا. اچھا جناب, اب جب یہ ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا کہ فرائیڈے کو ان کی میٹنگ ہونے والی تھی پی سی بی اینڈ بی سی سی آئی کی, جو کہ پھر جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, پھر اس کو کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے اب جو دونوں ہی اپنے جو سٹانس ہیں اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, بی سی سی آئی اور پی سی بی کے بیچ میں جو پھر یہ محسن بیگ یعنی کہ نہیں محسن نقوی اور جے شاہ صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوئی آئی سی سی کی موجودگی میں, اس میں اب یہ جو چیمپئنز ٹرافی 2025 ہے ہائبرڈ ماڈل کے اوپر کھیلی جائے گی, ان کے بیچ میں جو ڈائیلاگ ہوا ہے ذیشان وہ دکھا دیں, محسن نقوی اور جے شاہ صاحب کی تصویر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اس کے اندر ان کے بیچ میں ہائبرڈ جو ماڈل ہے اس کے اوپر کام ہوئے گا اور اس کے اندر جو یہ میچز ہونے والے ہیں فیبرری 19 اور مارچ 9 کے بیچ میں, اس میں پی سی بی نے پھر یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان نہیں آئے گا جو ہے پاکستان میں کھیلنے تو جب پھر ہندوستان میں ٹورنامنٹس ہوئیں گے تو ہائبرڈ سسٹم ہی چلے گا, پھر پاکستان بھی ہندوستان میں جا کے نہیں کھیلے گا. تو اب یہ جو سامنے رکھی گئی ہے بات, اس میں آئی سی سی کا بورڈ جو ہے اب اس کے اوپر غور فکر کرے گا اور بتائے گا کہ یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے کہا جی کہ جب انڈیا پاکستان کے میچز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ آئی سی سی کماتا ہے, لیکن چونکہ انفلوئنشل زیادہ انڈین بورڈ ہے تو وہ لائنز شیئر لے کے چلا جاتا ہے, لیکن چونکہ اس میں انڈیا اور پاکستان کھیلتے ہیں تو ساڈا بھی جڑا حصہ ہے. جی بتاؤ, نہیں یہ تو ان کی بات ٹھیک ہے پین, واٹ از دس جے شاہ صاحب, سارا پہ آپ لے کے جاؤ گے تو ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس کیا آئے گا ہیں جی. تو یہ انہوں نے بات صحیح کی ہے محسن نقوی نے. اور جناب پاکستان نے تھریش کیا نیپال کو بائی 10 وکٹس ان دا فرسٹ سیمی فائنل ایٹ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دے ہیو ریچ دا فائنل آف آن گوئنگ بلائنڈ T20 ورلڈ کپ 2024. یہ چیز کر رہے تھے 95 کا ٹارگیٹ جو کہ انہوں نے 5.3 اوورز میں پورا کیا اور وداؤٹ لوزنگ اینی وکٹ. جو نیپال تھا اس نے کہا تھا کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے اور 94/7 تھے وہ. پاکستان جو ہے اب یا تو سری لنکا یا بنگلہ دیش کو فائنل میں کرے گا جو کہ پھر جو ہے سیم وینیو پہ ہوئے گا کل, ہیں جی ایسے ہے. اور انڈیا کے پاس جو ہوسٹنگ رائٹس تھے آف 2025 بلائنڈ ویمنز T20 ورلڈ کپ وہ ان سے لے لیے گئے ہیں, کیونکہ ان کی مینز ٹیم جو ہے وہ ٹریول کر کے پاکستان نہیں گئی, یعنی کہ مینز بلائنڈ جو ہے وہ ٹیم وہ نہیں گئی اور ان کے جو انہوں نے کافی ویزے کو ہالٹ کیا, اپروولز کو ڈیلے کیا اور اپنی ٹیم کو پاکستان نہیں جانے دیا. ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل جو ہے اس کی میٹنگ ملتان میں چل رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب دونوں ہی کنٹریز یا تو انڈیا یا تو پاکستان بالکل یہ جو ہے بلائنڈ کرکٹ کے جو ٹورنامنٹس ہیں یہ بالکل نہیں کرائیں گے, لیکن انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے ہیڈ جو ہیں وہ پاکستان کے سید سلطان شاہ جو ہیں وہ رہیں گے, یعنی کہ جو ہے یہ جو ایسوسیشن ہے ورلڈ بلائنڈ کرکٹ ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں وہ شاہ صاحب رہیں گے. اینڈ جناب ایبسلیوٹلی اور لاسٹ نیوز, اسپنرز ابرار احمد اور سفیان مقیم جو ہیں انہوں نے 3-3 وکٹیں لیں جس کی وجہ سے پاکستان نے بیٹ کیا زمبابوے کو ان دا فرسٹ T20 آف 3 میچ سیریز ایٹ کوئن سپورٹس کلب. زمبابوے نے 108 رنز بنائے تھے ان 15.3 اوورز اور انہوں نے جو پہلی دو وکٹیں تھیں وہ تو تین اوورز کے اندر 18 رنز پہ گوا دی تھیں. حالانکہ مارو مانی جو ہے انہوں نے کافی اچھا کھیلا, 33 بنائے انہوں نے 20 بالز پہ, لیکن ان کو بھی 9th اوور میں ڈسمس کیا, اس کے بعد ان کی کافی پتلی حالت رہی اور زمبابوے 77/2 تھے اور پھر اس کے بعد ان کی وکٹیں گرتے ہی چلی گئیں اور صرف 108 رنز بنا سکے اس کے اندر. حالانکہ رضا نے بھی بڑے گٹسی 39 رنز بنائے تھے, مگر پاکستان کی آگے کچھ نہ چلی. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ہیرس روف ہیں انہوں نے بھی دو وکٹیں لیں. ٹھیک ہے جی,
یہ بالکل, اور نئی ٹیم نے جو ہے وہ زمبابوے کی ٹیم کو ہرا دیا.
ہاں
گڈ لک تھینک یو
پایا انڈیا نو راو دیا
ٹینشن نہ لیں ذرا معاملہ طے ہو جائے
اچھا
لین دین کے
دوستی ہو جائے کون کتنے پیسے لے گا
کتنے اصل چیز لین دین کا اور بات کچھ نہیں ہے بھائی باقی کہیں بھی کھیلو ہمیں کیا لین دین کی بات پہلے
مطلب یہ تو اب تم نے جیسے تم ہو نا جب بھی بیٹھتے ہو کہتے ہو عرفا جی کو کہ مجھے زیادہ دے دو تو یہ تو تم تو انڈیا بنے ہوئے ہو نا ہمیشہ مجھے زیادہ بھائی جب کھیل دو لوگ رہے ہیں تو پھر تو ادھے ادھے پیسے ہونے چاہیے نا لیکن نہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس
وہ لاٹھی کون ہے اور بھینس کون ہے
وہ دونوں انڈیا
دونوں انڈیا تو بھائی ریوینیو آپ کو زیادہ بنا کر دیتا ہے نا کہتے ہیں یار جو ہم ریوینیو بنا کے دیتے ہیں آئی سی سی کو وہ آپ بنا کے دے دیں تو آپ لے لیں لاٹھی یہ لیں اور بھینس بھی لے جائیں
لیکن پاکستان کے اندر سانو بھینس کی دم تو دے دو یار تھی
پاکستان چلیں دیکھتے ہیں محسن نقوی صاحب کیا کرتے ہیں چلیں جناب بہت شکریہ آپ کا گرما گرم رنگا رنگ خبروں کے لیے تمام سامعین کا ناظرین کا مال
لیکن خطرہ بہت بڑھ گیا پھر سے مڈل ایسٹ میں وہ رو مسا مسا لبنان کی وار رکی تھی تو اب سیریا میں جی شروع ہو گئی ہے
شروع کر دی آج بھی وہ ہوتیوز نے جو ہے وہ ایک سی پر جو ہے ریڈ سی میں میزائل مارے اور حالات جو ہیں وہ کچھ لیکن اچھی خبر چلیں ابھی بات ہے ذہن میں آ گئی اگلا فیفا ورلڈ کپ کہاں ہونے جا رہا ہے
سعودیہ میں
100% 101% اور آلموسٹ وہ جیت
بڑے بڑے وہ بڑے بڑے وہ بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں ایسے اسٹیٹ
مطلب جتنا سعودیہ لاسٹ 5-10 سالوں میں اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے ری شیپ کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ
نہیں نہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے دبئی کی ایگزامپل لی ہے نا انہوں نے دبئی کو دیکھا انہوں نے کہا چھوٹا سا یہ ایک یو اے ای کنٹری ہے اس کے اندر
دنیا کو اس نے اٹھا کے رکھا
ساری دنیا کو اٹریکٹ کیا ہوا ساری دنیا دبئی 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 کرتی جا رہی ہے جی تو ہم ان سے کتنا بڑا ملک ہیں ہمارے پاس زیادہ
اسی لیے وہ پہلے یہ سعودی عرب نا ذہن میں یہ تھا کہ سعودی عرب تو وہ ریلیجیس ایکٹیویٹیز زیادہ نظر آ رہی تھی انہوں نے اس چیز کو بہت ٹائم سے کام کر رہے ہیں کہ مکہ مدینہ کو سعودیہ سے ایک وہ پارٹ ہے اور باقی بھی سعودیہ ہے تو وہ اس چیز کو اب زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں بھائی سعودی عرب از ناٹ اونلی مکہ مدینہ اس کے علاوہ بھی سعودیہ ہے تو وہ گیمز ہو رہے ہیں کانسرٹس ہو رہے ہیں
بالکل 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 کیونکہ بڑا ملک ہے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور بہت زیادہ ریسورسز ہیں بہت زیادہ
ریسورسز کی کمی نہیں ہے
کمی نہیں ہے وہی محمد بن سلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مڈل ایسٹ میں تو ایٹ لیسٹ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ٹریڈ انٹرٹینمنٹ سپورٹس کچھ بھی سوچے تو اس کے دماغ میں اب پہلا نام دبئی نہیں سعودیہ
سعودیہ جناب بیسٹ آف لک دیکھتے ہیں ہوپ فلی سعودی عرب جو ہے وہ ون کر جائے گا فیفا ورلڈ کپ آنے والا
اس کے سامنے کوئی
کھڑا ہوگا بھی نہیں پیسے کھلا دیں گے یہ میں کہہ رہا ہوں چلے جی بہت شکریہ
ہمارے
شامل ہونے کا ایز یوزول زندگی رہی اور آپ زندہ رہیں تو انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تمام سامعین کا اور ناظرین کا بہت شکریہ مزہ شامل ہونے کا eawaz.com پر آپ ہمارا ریڈیو سن سکتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا آئی پی ٹی وی باکس ای آواز اس پر بھی آپ یہ نشریات دیکھ سکتے ہیں چلیں جناب پوری مینجمنٹ کی طرف سے آرفا مظفر صاحب کی طرف سے وہ مینجمنٹ ان کی والی مینجمنٹ کی طرف سے آرفا مظفر صاحب کی طرف سے ماجد جمال صاحب کی طرف سے ہمارے انجینئر ذیشان احمد کی طرف سے اجازت دیں میں آپ کا ہوسٹ عامر احمد انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے السلام علیکم
دشمنوں کی طرح میں دشمن تو نہیں میں دشمن تو نہیں مگر ہنسی جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو دوست دی تھراتے ہیں مرمری خواب گنگناتے ہیں
دھڑکنوں میں سرور پھیلا ہے رنگ نگری مدور پھیلا ہے
دعوت عشق دے رہی ہے فضا آج ہو جا کسی حسین پہ فدا
थे।
मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।
Listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Sodi Furniture Store Clearance. Saving, saving, saving.
Sale, sale, sale.
Sodi Furniture Stock Clearance.
Everything on floor, to go. Warehouse Furniture Sale.
Ji haan, Sodi Furniture lagat ki kimat se kam kimat.